আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. آج کی ہماری اس نشست کا عنوان ہے اخلاص. ہر چیز کی ضد ہوتی ہے, جیسے دن اور اس کی رات, اسی طرح روشنی اندھیرا, یہ ساری چیزیں ہیں. تو اخلاص کی ضد ریاکاری. جہاں اخلاص ہوگا ریاکاری نہیں ہوگی, اور جہاں ریاکاری ہوگی اخلاص ختم ہو جائے گا. بات سمجھ رہے نا؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اخلاص کسے کہتے ہیں, پھر ہم اس پر گفتگو کریں. اس سلسلے میں ہم چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کریں گے, جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاص کے بارے میں کیا فرمایا. پہلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو شخص اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوا کہ وہ اللہ وحدہ کے ساتھ اخلاص پر تھا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا, نماز قائم کرتا تھا, زکوٰۃ ادا کرتا تھا, اور اس حال میں مرا کہ اللہ اس پر راضی تھا. پہلی چیز یعنی عبادت صرف اللہ کے لیے کرے, نماز قائم کرے, زکوٰۃ ادا کرے, تو سرکار فرماتے ہیں وہ اس حال میں مرا کہ اللہ اس سے راضی تھا. دوسری حدیث, یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے. دوسری حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انہیں یمن کی طرف بھیجا گیا تو انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کچھ وصیت فرمائیے. سرکار نے فرمایا, اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرو, تمہیں کم عمل بھی کافی ہوگا. اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرو, یعنی اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو, کوئی ریاکاری نہ ہو, تو تمہیں کم عمل بھی کافی ہوگا. بہت سا عمل کرنے کے بجائے اگر کم عمل آدمی کرے اور اسی میں اخلاص ہو تو وہی کافی, اور بہت سارا عمل کر رہا ہے اس سب میں دکھاوا ہو, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, صدقات, خیرات, صدقات اس لیے کہ لوگ مجھے سخی سمجھے, زکوٰۃ اس لیے کہ لوگ مجھے سمجھے کہ بہت بڑا زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے, بہت سخی ہے, اسی طرح دیگر اعمال, تو یہ سارے اعمال کر رہا ہے لیکن اگر اس میں ریاکاری ہے, دکھاوا ہے, تو وہ سب بیکار. اور عمل کم ہے لیکن اخلاص ہے, تو اس حدیث شریف کے مطابق سرکار نے فرمایا وہی تمہیں کافی. تیسری حدیث مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا یہ گمان تھا, یعنی ان کے والد کا, کہ ان کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ان اصحاب پر فضیلت ہے جن کے پاس ان سے کم مال ہے. ہر ایک کے پاس مال برابر نہیں ہوتا نا, کسی کے پاس کم, کسی سے زیادہ. تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ وہ لوگ جن کے پاس مال کم ہے اور میرے پاس زیادہ ہے, مجھے ان پر فضیلت ہے. یہ ان کا گمان تھا, خیال تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد صرف ضعیف مسلمانوں کی دعاؤں, ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے فرماتا ہے. یعنی ان کے اس خیال کو سرکار نے رد فرما دیا. انہوں نے سوچا نا, ان کے پاس مال کم ہے, میرے پاس زیادہ ہے, مجھے ان پر فضیلت ہے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد ان ضعیف مسلمانوں کی نمازوں اور ان کی دعاؤں اور ان کے اخلاص کی وجہ سے فرماتا ہے. یہ دوسری حدیث, یہ بھی سنن نسائی میں موجود ہے. تیسری حدیث حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ ایک آدمی جہاد کرتا ہے وہ اس کے اجر کا طالب ہے اور شہرت کا بھی طالب ہے, یعنی جہاد جو کر رہا ہے اس کے اجر کا بھی طالب ہے کہ جیسے میں جہاد کروں تو مجھے اجر ملے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہرت کا بھی طالب ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں, کیونکہ ساتھ ساتھ شہرت آ گئی نا. اگر صرف جہاد کا طالب ہوتا کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں تو پھر اجر ہے, لیکن اس نے کیا کہا کہ ایک شخص جہاد کا طالب ہے اور اس کے ساتھ شہرت کا بھی طالب ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کے لیے کوئی اجر نہیں. اس نے تین بار یہ سوال دہرایا اور تین بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی جواب ارشاد فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں. پھر فرمایا بے شک اللہ تعالی اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو. جو خالص اس کے لیے ہو کیا مطلب؟ اللہ تعالی کے لیے, صرف اس کی ذات کا ارادہ کیا گیا ہو, جس عمل میں صرف اس کی ذات کا ارادہ کیا گیا ہو. اب یہ تین حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی, اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ پہلی چیز, انسان ایک نیک کام کر رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ اس سے مجھے اجر ملے, ثواب ملے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے شہرت بھی ملے, لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا سخی ہے. مثلا وہ صدقہ تو خیرات کر رہا ہے, اب نیت کیا ہے کہ میں یہ صدقہ دوں گا, خیرات کروں گا لوگوں میں, مجھے ثواب ملے گا, یہاں تک عمل ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ یہ بھی خیال ہے کہ لوگ سمجھیں کہ بہت بڑا سخی ہے, دروازے پر بھیڑ لگی ہوئی ہے, لوگ آ رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں, لوگ میری شہرت ہو, پھر وہ عمل اخلاص اس میں نہیں رہتا, پھر اس کے اندر ریاکاری آ جاتی. اور جس عمل میں ریاکاری آ جائے آپ سمجھ لیں کہ وہ اس طرح بکھر جاتا ہے جس طرح ذرے بکھر جاتے, ذرے بکھر جاتے نا, اس طرح بکھر جاتے, یعنی بالکل عمل ختم ہو گئے. اور اگر خلوص ہے تو وہی عمل اللہ تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ ہم جو بھی کام کریں, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, صدقات ہو, خیرات ہو, کوئی بھی نیک عمل ہو, خالص اللہ کی رضا کے لیے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں, اپنی شہرت کے لیے نہیں. جس طرح کے سرکار سے پوچھا کہ وہ جہاد کا طالب ہے اور شہرت کا بھی طالب ہے, فرمایا اس کے لیے کوئی اجر نہیں. اور اگر صرف یہ ہو کہ وہ جہاد کا طالب ہے پھر اس کے لیے اجر و ثواب, بے شمار اجر و ثواب. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم جو بھی عمل کریں لوگوں کے لیے نہیں, اللہ تعالی کے لیے. اگر نماز پڑھی تو مولا تیری رضا کے لیے, اگر حج کیا ہے تو تیری رضا کے لیے, حاجی کہلوانے کے لیے نہیں. کوئی ایک حج کر لے نام کے ساتھ فوراً حاجی صاحب لگے. امام علی مقام نے 25 حج پیدل کیے, کبھی نام کے ساتھ حاجی لگایا؟ کسی نے دیکھا حاجی امام حسین رضی اللہ تعالی؟ انہوں نے خود لکھا یا کسی نے لکھا؟ نہیں. بزرگان دین اولیاء کاملین نے پیدل حج کیے, کبھی حاجی نہیں لگایا. پتہ نہیں ہمارا حج قبول ہوا یا نہیں. اخلاص خالص اللہ کی رضا کے لیے, کوئی بھی عمل ہو, عبادت چھپ کے کرتے رہے, ساری رات جاگ کر عبادت کرتے رہے, کبھی یہ نہیں کہا ہم نے آج پوری رات جاگ کر عبادت کی. کیا مطلب؟ وہ جانتے تھے اگر اس کے اندر ریاکاری شامل ہو جائے گی تو اخلاص ختم ہو جائے. اور یاد رکھے, جہاں اخلاص ہوگا ریاکاری نہیں ہوگی, اور جہاں ریاکاری ہوگی اخلاص ختم ہو جائے. और जैसे ही रियाकारी दाखिल होती है अमल बिखर जाता है, जर्रों की तरह उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। कैसे से कैसा बड़ा अमल हो, जकात हो, सदकात हो, खैरात हो, कोई भी नेक अमल हो, जहां उसके अंदर रियाकारी आ गई आप समझ लो बिल्कुल खत्म हो गया। और अगर वो अमल खालिस अल्लाह की रजा के लिए है तो फिर उसी वक्त बारगाह खुदावंदी में मकबूल है। अगर दो नफिल सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हैं तो वही कबूल है, और अगर हजार नफिल हैं और उसके अंदर रियाकारी है वो सब बेकार। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह हम अपने आमाल को बचा सकते हैं और इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने किस तरह अपने आमाल को बचाया। एक साहब थे, मशहूर था कि ये आदमी बड़ा कंजूस है, जो दरवाजे पे जाए उसको मार के निकाल दे, चल भाग यहां से, भाई मैं गरीब हूं मुझे कुछ दे दो, धक्के दे के निकलवा दे। यार ये बड़ा अजीब आदमी, किसी को एक पैसा नहीं देता, कंजूस आदमी है, मुख्तलिफ नामों से लोग उसको पुकार रहे, कभी देखा नहीं किसी को कुछ दे रहा। और उसी का जो पड़ोसी था वो बड़ा सखी था, जो उनके दर पे जाए फौरन, जिसने जो मांगा उसका दुगना दे दिया, किसी ने एक जोड़ा मांगा तो दो दे दिया, 1,000 मांगा तो दो दे दिया। अब लोग कहते देखो दोनों करीब करीब रहते हैं, लेकिन एक कितना कंजूस है, दूसरा कितना सखी है। इसके पास जाओ तो एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं, सीधे मुंह बात नहीं करता, और उसी के पड़ोस में जाओ तो जो मांगो वो देने के लिए तैयार। अच्छा, अब जब उसका इंतकाल हुआ, जो कंजूस मशहूर था तो जाहिर है जैसा मशहूर होगा, जैसा लोग उसको जानते होंगे पहचानते होंगे वैसे ही अमल करें। किसी ने कहा भाई इसकी नमाज भी नहीं पढ़ो, वो कहता मैं गया था मुझे भगा दिया, वो कहता मुझे धतकार दिया, इसने मुझे ये कर दिया, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। तो उसका पड़ोसी जो मशहूर था कि ये बड़ा सखी है, वो आया, उसने कहा सुनो तुम क्यों नहीं जा रहे, भाई तुम्हें पता ही है कि ये कितना कंजूस आदमी था, आज तक किसी को एक पैसा नहीं दिया। उसने कहा नहीं, आज मैं इस राज को फाश कर रहा हूं, आज इस राज को फाश कर रहा हूं। कौन सा राज? कहा सबसे बड़ा सखी तो वही था। ये कैसे? हमने तो कभी देते हुए देखा नहीं। कहा देखो मेरे पास कुछ नहीं था, मैं जो सबको देता था मेरे पास कुछ नहीं था, हम दोनों का घर बराबर था, दीवार एक थी, उस दीवार में खिड़की उसने बना दी थी, और कहा देखो जो मेरे दरवाजे पर आए मैं तो भगा दूंगा, लेकिन जब तुम्हारे पास आए तो तुम इधर से आकर खिड़की में से मुझसे ले लेना और जाके उसको दे दे। रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, लोग समझे नहीं कि ये बहुत बड़ा सखी है देने वाला, मुझे ऐसे ही रहने दो। उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने जिसको जो कुछ दिया उसी से लेकर दिया, जो मांगने के लिए आता था मैं सीधे जाकर खिड़की को भी दस्तक दे दो। उसने क्या हुआ, फकीर आया, कहा लो दे दो। कितना मांगा? उसने कहा एक पैसा, उनका दो पैसा दे दो। 100? तो कहा चलो 200 दे दो। असल तो वही था, लेकिन उसने मुझसे ये वादा लिया था कि इस राज को मेरी जिंदगी में फाश नहीं करना, कहीं मेरे अमल में रियाकारी ना आ जाए, दिखावा ना आ जाए, मेरी नियत में ये ख्याल ना आ जाए, मेरे दिल में यह ख्याल पैदा ना हो जाए कि मैं बहुत बड़ा सखी हूं, देखो लोग मुझे क्या क्या समझ रहे हैं। इसलिए इस राज को राज रहने देना, जब मेरा इंतकाल हो जाए तब इस राज को फाश करना, जिंदगी में नहीं करना। जिंदगी में लोग बुरा भला कहते रहे, कंजूस है ये, देता नहीं है, एक पैसा किसी को नहीं दिया, धक्के दे के निकाल दिया, और जब बराबर वाले के पास जाते वो आकर खिड़की में से इससे मांगता, ये इसको दे देता और वो जाकर फकीर की हाजत रवाई कर देता। ये है इखलास। लोगों ने इस तरह अपने अमल को बचाया है, इस तरह अपने अमल को बचाया, और जब लोगों ने सुना कि वाकई ऐसा था तो अब दौड़े हुए गए उसके जनाजे में और जाकर करा रहे असल सखी तो तू ही था, असल तो तू ही था, हम तो जिंदगी में समझ नहीं सके, और इज्जत के साथ उसको दफन किया और उसके लिए दुआएं करते रहे। और हमारी आज की कैफियत क्या है, माशरे की कैफियत आप सब जानते हैं और मुशाहिदा भी करते हैं। अगर किसी बेवा की मदद की गई, फौरन फोटो अखबार में आ गया, आता ही नहीं आता। बेवाओं में सिलाई मशीनें तकसीम की जा रही, जो तकसीम कर रहे उनका फोटो भी आ रहा है, फला जगह अनाज तकसीम किया जा रहा, फला गरीब की मदद की जा रही है, चेक दिए जा रहे हैं, क्या बाद में कैश हो या ना हो, दिखावा है ना, रियाकारी। इस्लाम क्या कहता है, अगर रियाकारी आएगी अमल में से इखलास खत्म हो जाएगा। लिहाजा अपने आमाल में इखलास पैदा करो, किसी की मदद करो खामोशी के साथ, किसी को पता ना हो, इसलिए कि जिसको बताना है वो जानता है, अल्लाह को बताने की जरूरत नहीं ना। अलीमुम बिजाते सुदूर, दिलों में छुपे हुए राजों को जानता है तो उसको बताने की क्या जरूरत है। आप छुपकर मदद कर रहे हैं वो जानता है, रात में कर रहे हैं वो जानता है, दिन में कर रहे हैं वो जानता है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं। जब वो जानता है, हमारा ताल्लुक उससे है और उसको बताने की जरूरत नहीं है, तो जब वो जानता है तो फिर तमाम लोगों को बताने की क्या जरूरत है। हमें सिर्फ रब को बताने की जरूरत है, और वो उस वक्त होगा कि जब अमल में इखलास होगा, और जब इखलास होगा रियाकारी नहीं होगी, और जहां रियाकारी आएगी इखलास रुखसत हो जाए। और दूसरी बात याद रखिए, शैतान का दाव भी इखलास रखने वालों पर नहीं चलता, जिनकी नियतों में खुलूस होता है ना, खालिस अल्लाह के लिए इबादत करें, उन पर शैतान का दाव नहीं चलता। और जो लोगों को दिखाने के लिए करें वो फौरन हमला करता है और उन्हें गुमराह कर देता। शैतान ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। मौला मैं तेरे बंदों पर हमला करूंगा, उनको बहकाऊंगा, कहां से, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, चारों तरफ से हमला करूंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तेरा ना शुक्रा और ना फरमान ना बना, उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा। लेकिन दो जेहतें शैतान ने छोड़ दी। उसने कितनी जेहतें बयान की, चार, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, दो जेहतें छोड़ दी। कौन सी, ऊपर से और नीचे से। ये नहीं कहा ना कि ऊपर से बहकाऊंगा और ये नहीं कहा नीचे से बहकाऊंगा, नहीं। मिन बैन अयदीहिम व मिन खल्फहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइल, चार, दो जेहतें क्यों छोड़ दी। इसलिए छोड़ दी, उलमा ने लिखा, इंसान जब नमाज पढ़ता है तो सजदा करता है ना, तो कहां करता है, नीचे की तरफ झुकता है, नीचे की तरफ। और नमाज के बाद जब हाथ उठाता है तो उठाता है ऊपर की तरफ, सजदा नीचे की तरफ, दुआ के लिए हाथ उठाता है ऊपर की तरफ। दो जेहतें इसलिए शैतान ने छोड़ दी कि वो जानता था जो अल्लाह की बारगाह में झुकते रहेंगे और इसके बाद हाथ उठाते रहेंगे मेरा दाव नहीं चलेगा। दो जेहतें छोड़, झुकते रहेंगे और उसके बाद हाथ उठाते रहेंगे, पता चला कि झुकना भी जरूरी है और नमाज के बाद दुआ करना भी जरूरी। और ऐसे भी लोग हैं जो दुआ ही नहीं करते नमाज के बाद, नहीं करते ना, कहते कि नमाज दुआ ही तो है, सूरह फातिहा पूरी दुआ है, नमाज मुकम्मल दुआ है, तो हमें दुआ करने की क्या जरूरत। हालांकि याद रखिए, फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, फर्ज नमाजों के बाद की गई दुआ जरूर कबूल होती है। फर्ज नमाजों के बाद दुआ जरूर करनी चाहिए, क्या आदमी मुख्तसर करे, लेकिन दुआ करनी चाहिए कि फरमाया फर्ज नमाजों के बाद की गई दुआ जरूर कबूल होती। इसीलिए हम नमाज जनाजा के बाद भी दुआ करते हैं, दूसरे लोग नहीं करते ना, वो कहते दुआ ही तो है, क्या जरूरत है दुआ करने की, दूसरों को भी मना करते हैं। हमने कहा कमाल हो गया, दुआ से भी रोक रहे हो, अल्लाह से मांगने से भी रोक रहे हो, गैरुल्लाह से तो रोक ही रहे थे, इनसे नहीं मांगो, बुजुर्गों से, नबियों से नहीं मांगो, वलियों से नहीं मांगो, चलो अल्लाह से तो मांग रहे हैं ना, उससे भी मांगने से रोक रहे हो। तो इसी हदीस को दलील बनाया नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगने के लिए। और दुआ हर वक्त मांगी जा सकती, नमाज से पहले, नमाज के बाद, किसी वक्त भी आप चाहें हाथ उठा ले दुआ मांग ले। तो जो अल्लाह की बारगाह में झुकते रहेंगे और हाथ उठाते रहेंगे वो शैतान के हमलों से महफूज रहेंगे। तो जिनकी नियतों में खुलूस होगा शैतान का दाव नहीं चलेगा। एक इलाके में एक दरख्त की पूजा शुरू हो गई, इबादत शुरू हो गई, लोग जाके सजदे कर रहे हैं उसके दरख्त के सामने, हाथ जोड़ रहे हैं, ये हमारा खुदा है। एक आबिद, आबिद कहते हैं इबादत करने वाला, इबादत गुजार बंदा, अपने हुजरे में इबादत खाने में बैठा हुआ, लोगों ने जाकर कहा हजरत आप यहां बैठे हैं वहां पे शिर्क हो रहा है, लोग सजदे कर रहे हैं दरख्त को जाके, मांग रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। अच्छा, कुल्हाड़ा लिया और चल पड़ा, आज मैं इस दरख्त को ही काट दूं, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, दरख्त ही नहीं रहेगा तो किसकी पूजा करेंगे, किसके सामने सजदे करेंगे। चला, जब ये रास्ते में पहुंचा, आधे रास्ते में, तो शैतान आ गया फौरन और इंसानी लिबास में आकर उसको रोक लिया, कहां जा रहे हो? उसने कहा मैं दरख्त को काटने जा रहा हूं। क्यों? वहां शिर्क हो रहा है, लोग सजदे कर रहे हैं उसको, उसके सामने झुक रहे हैं। इसने कहा मैं नहीं जाने दूंगा, उसने कहा नहीं मैं जाऊंगा, दोनों में लड़ाई हो गई, कुश्ती हो गई। और जब लड़ाई हुई तो आबिद साहब ने शैतान साहब को गिरा दिया, शैतान को गिरा दिया उसके सीने पर सवार, अभी मैं तुझे खत्म करता हूं। अब शैतान ने देखा कि मैं तो कमजोर हूं, ये ताकतवर है, अब मैं कैसे जान छुड़ाऊं? तो याद रखिए, शैतान का एक हरबा है लालच, वो इंसान के दिल में लालच पैदा कर देता, हवस। उसने फौरन अपना वही हरबा इस्तेमाल किया और उस आबिद से कहा देखो अगर आज तुम मुझे छोड़ दो, क्योंकि उसके सीने पे सवार है ना बैठा हुआ, मुझे छोड़ दो और उस दरख्त को भी छोड़ दो। क्या मतलब? क्यों छोड़ दूं मैं दरख्त को? अरे तुम आज वापस चले जाओ तो तुम्हारे तकिए के नीचे से दो अशरफियां निकलेंगी। अच्छा, लालच आ गई। तुम जब रात को सोओगे ना और सुबह उठोगे तो तकिया उठाकर देखना, दो अशरफियां निकले। आबिद साहब के नियत में लालच आ गई, उन्होंने शैतान को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा लेके वापस चले गए, जाके सो गए। सुबह उठे, तकिया हटाया, वाकई दो अशरफियां, बड़े खुश हुए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, दौलत मिल रही है बगैर कमाए। अब क्या हुआ? लालच आ गई, इखलास खत्म, इखलास खत्म हो गई ना। कुछ दिन के बाद तकिया उठाया, कुछ नहीं, एक दिन दो दिन अशरफियां मिली, उसके बाद कुछ नहीं। तो अच्छा, ये तो उसने मुझे धोखा दिया है। दोबारा कुल्हाड़ा उठाया, फिर चले, फिर रास्ते में मौजूद, कहां जा रहे हो? दरख्त काटने जा रहा हूं, वहां पे शिर्क हो रहा है, लोग सजदे कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। फिर इसी तरह मुकालमा हुआ, बहस मुबाहसा हुआ, आपस में फिर कुश्ती शुरू हुई। लेकिन क्या हुआ? इस मरतबा शैतान ने आबिद को गिरा दिया। पहले इसने शैतान को गिराया था, अब उसने इसको गिरा दिया और शैतान उसके सीने पे सवार और इसने अपने जिस्म में कमजोरी महसूस की। जाहिर ताकत होती तो उस पर गालिब हो जाता, अब मगलूब हो गया, अब शैतान बैठा है उसके ऊपर। उसने कहा यार ये क्या बात, पहले तो मैं इसको काबू कर लेता था, मैं गालिब था, मैंने इसको गिरा दिया था, ये कमजोरी मेरे जिस्म में कैसे पैदा हुई? शैतान ने कहा सुन, पहली मर्तबा जब तुम निकले थे तो तुम्हारी नियत में इखलास था, तुम खालिस अल्लाह की रजा के लिए निकले थे, अशरफी के लिए नहीं निकले थे। फिर मैंने क्या किया, जब तुमने मुझे गिरा दिया, मुझ पर गालिब हो गए, काबू पा लिया, मैंने अपना हरबा इस्तेमाल किया, लालच दी, तुम लालच में आ गए कि तकिए के नीचे से अशरफी निकलेंगे, और मैंने रख दी, वो तुमने निकाल ली, दो दिन के बाद मैंने छोड़ दी, मेरा काम हो गया था, तुम्हारा इखलास मैंने खत्म कर दिया, लालच तुम्हारे अंदर पैदा कर दी, मेरा काम हो गया। अब जो तुम्हारे अंदर कमजोरी है इसी वजह से है कि इखलास नहीं है, लालच है, रियाकारी है, तुम इसीलिए आए हो कि मैं फिर तुम्हें रोकूं, फिर दोबारा तुमसे कहूं नहीं वापस चले जाओ और जाकर देखो फिर तकिए के नीचे से अशरफी निकलेगी। पता चला कि जब नियत में रियाकारी पैदा होगी खुलूस रुखसत हो जाएगा, और जब खुलूस होगा रियाकारी नहीं। तो शैतान उसी वक्त काबू पाता है इंसान पर जब उसके अमल में रियाकारी हो। रियाकारी का मतलब दिखावा, जैसे नमाज पढ़ रहे हैं ना, ख्याल है लोग समझे बड़ा नमाजी है, लोग समझे बड़ा नमाजी है। ऐसे भी बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, हालांकि नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़नी चाहिए। दो आदमी रेल में सफर कर रहे थे, एक ने पूछा हजरत आपका नाम क्या है? कह रहे हाजी अब्दुल रहीम। अच्छा हाजी अब्दुल रहीम, कह रहे जी। कह रहे आपका नाम? कह रहे नमाजी अब्दुल करीम। ये क्या बात हुई, नमाजी अब्दुल करीम? कि भाई हज तो उम्र में एक ही दफा है ना, तो आपने एक दफा करके हाजी लगा दिया, तो नमाज तो मैं दिन में 5 दफा पढ़ लूं, मैं नमाजी नहीं लगा सकता। तो आप हाजी अब्दुल रहीम है तो मैं नमाजी अब्दुल करीम। यानी वो उसको बताना चाहते थे कि अगर तुम हज करो तो इसलिए नहीं कि हाजी कहलाओ, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाए। सरकार ने फरमाया जिसने सही तौर पर, यानी हदीस शरीफ का मफहूम है कि सही अरकान के साथ हज अदा किया, जब वो वापिस लौटा तो ऐसा है कि उसकी मां ने आज ही उसे जना, गुनाहों से पाक और साफ पैदा हो। क्यों? अमल में इखलास, कोई रियाकारी नहीं, दिखावन। तो नमाज पढ़ो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, हज करो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, जकात अदा करो अल्लाह की रजा के लिए, सदका तो खैरात अल्लाह की रजा के लिए, ये जितने वजाइफ हम पढ़ रहे हैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। अब कोई वजीफा पढ़ रहा है मेरी शादी हो जाए, कोई पढ़ रहा है कि औलाद हो जाए, कोई पढ़ रहा है कि कारोबार में तरक्की हो जाए। अगर सिर्फ नियत ये रखो कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए तो सारे काम खुद ब खुद हो। तो इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने जो कुछ पढ़ा सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, वो जानते थे कि उसकी रजा पर सबकी रजा मौकूफ है, जब ये राजी है तो सब राजी। सुल्तान महमूद गजनवी ने एक दिन बड़े जोश में आए, कहा हीरे जवाहरात लाओ, ले आए, कहा यहां फैला दो, फैला दिया। दरबार में जितने लोग थे कहा उठा लो, जिसको जो चाहिए ले लो। दरबारी तो बड़े उठा उठा के जेब में भर रहे, आज तो हीरे जवाहरात बादशाह की तरफ से इज़्ने आम है, ऐलान है। कहा जिसको जो चाहे, जो जितना चाहे ले ले, सब ले रहे। तो महमूद गजनवी का गुलाम अयाज, बड़ा वफादार गुलाम, वो खामोश खड़ा, कुछ नहीं दिया। महमूद ने देखा अयाज तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, ये देखो सारे लोग लूट रहे, तुम्हें क्या चाहिए। वो वहां से चलता हुआ आया, बादशाह के कंधे पर हाथ रखा, मुझे ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, यानी आप चाहिए बस। क्यों? जब बादशाह मेरा हो गया तो सारी बादशाहत मेरी। कैसी बात, जब बादशाह मेरा हो गया तो सारी बादशाहत मेरी। अरे ये हीरे जवाहरात जो लूट रहे तो चंद दिनों में खत्म हो जाएंगे, कोई बेच देगा, कोई कुछ कर लेगा, खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर बादशाह मेरा है, जब तक बादशाह मौजूद है सारी बादशाहत मेरी, जो मैं चाहूंगा करूंगा। तो ये तो एक दुनियावी मिसाल थी। इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने इसी नुक्ते को समझा कि खुदा की बादशाहत कयामत तक के लिए है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, अजल से है, अबद तक रहेगा, शुरू से है, आखिर तक रहेगा। तो उन्होंने कहा इसी को राजी कर लो, जब ये राजी हो गया, रब राजी तो जग राजी, जब ये राजी हो गया तो सब राजी हो गए। लोग आते ना, ये अफसर राजी हो जाए मेरी तरक्की हो जाए, ये फला राजी हो जाए तो मुझे काम मिल जाए, फला राजी हो जाए तो मेरा बिल क्लियर हो जाए, फला राजी हो जाए तो ये काम हो जाए। ये सारी चीजें हैं ना, रजा पर ही मौकूफ है। लेकिन ये नहीं सोचते कि जब वो राजी हो जाए तो ये खुद ब खुद राजी हो जाए। उसको राजी करने के लिए कोशिश करो। उसको राजी करने वाले जो काम है वो तो छोड़ दिए और दुनिया वालों को राजी करने की कोशिश कर रहे। और इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन ने क्या किया, दुनिया को छोड़कर रब को राजी किया, रातों को जाकर नवाफिल पढ़ के उसकी रजा को हासिल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह की जरबे लगाकर उसको राजी किया, इखलास के साथ अमल करके उसको राजी किया। जब रब राजी हो गया पूरी कायनात राजी हो गई। और ऐसी राजी हो गई कि अगर उनके विसाल को 900 साल भी हो गए, 1000 साल भी हो गए, आज भी लोग उनको पुकार रहे, तो ये उसकी रजा। और नतीजा सिर्फ इस बात का है कि अमल में इखलास है, रियाकारी नहीं है। उन्होंने हज इसलिए नहीं कहा किया कि हमारे नाम के साथ हाजी लगे। ज़कात सदक़ात इसलिए नहीं दिए कि लोग समझे कि बहुत बड़ा सखी है। दीगर नेक काम इसलिए नहीं किए कि ये नाम के साथ टाइटल लग जाए या लोग हमें समझे, नहीं। वो क्या चाहते थे? रब हमें क्या समझता है, उसकी नजर में हम अच्छे हो जाएं, पूरी कायनात में अच्छे हो। तो इबादत छुप के करो, अपनी इबादत को जाहिर मत करो। अगर किसी को कुछ बता दिया जाए, वो लोगों में बैठ के, जी हमने इतने चिल्ले किए, हजरत ने इतने चिल्ले करा दिए, इतनी दफा मैं सूरह मुज़म्मिल पढ़ रहा हूँ, इतनी मरतबा मैं दुआ हिफ्ज़ुल बहर पढ़ रहा हूँ, इतनी मरतबा मैं फला चीज पढ़ रहा हूँ, जब कह दिया समझो खत्म हो गए। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं खामोशी के साथ पढ़िए, रब को राजी रखने के लिए पढ़िए। और उस पढ़ने में जो कुछ कैफियात हो वो सिर्फ अपने शेख को उससे आगाह कीजिए और किसी को नहीं। कोई ख्वाब देखा, कोई कैफियत तारी हुई, लोगों में बैठकर बयान कर दी, आज मुझ पर ये इंकशाफ हो गया, ये चीज होने वाली थी मुझे पहले से पता चल गया, जब बता दिया समझो वो चीज खत्म हो गई। बताना सिर्फ अपने शेख को है और किसी को नहीं, ये भी राज है। इसमें भी रियाकारी पैदा हो जाती। बुजुर्गाने दीन औलिया कामिलीन की जात, उनकी सीरत हमारे लिए नमूना है। कितने चिल्ले किए, कितने रियाजत मुजाहिदात किए, कभी जबान पर नहीं आया हमने ये काम किए। अब बजुर किबला ने सिर्फ अल्लाह समद के 70 चिल्ले किए, सिर्फ अल्लाह समद के, और पे दर पे किए, एक के बाद एक किया। फरमाते जिस तरफ मैं नजर डालता था मुझे अल्लाह समद लिखा हुआ नजर आता, कल्ब व जहन में ये लफ्ज उतर गया था, लेकिन कभी जबान से सुना कि मैंने ये किया है नहीं, कभी किसी के सामने जाहिर नहीं किया, छुपाते रहे छुपाते रहे। हमें जिसको राजी करना है वो जानता है, जिसको बताना है वो जानता है। रात में जाकर इबादत की, अल्लाह तबारक व ताला ने कबूल कर ली, इसलिए कि इखलास था। तो आप क्योंकि अहले तरीकत हैं, अहले मोहब्बत हैं, राह सलूक के मुसाफिर हैं, इसलिए आप पर, हम सब पर ये लाजिम है कि हम अपनी इबादत को छुपाएं, जाहिर ना करें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तुझे क्या मिला, क्यों मिला, किसने बख्शा, कहीं जिक्र आया तो अच्छा ना हो। ये एक शेर है, तुझे क्या मिला, क्यों मिला, किसने बख्शा, कहीं जिक्र आया तो अच्छा ना होगा। कभी भूल कर गैर के नक्शे पा को जिबी से लगाया तो अच्छा ना हो। हजारों मसाइब है राह तलब में, अगर हिचकिचाया तो अच्छा ना हो। हो कुछ भी मगर जो कदम उठ गया है वो पीछे हटाया तो अच्छा ना होगा। समझ गए, याद रखना, हो कुछ भी मगर जो कदम उठ गया है वो पीछे हटाया तो अच्छा ना होगा। हमारी अता की हुई बेखुदी से अगर होश आया तो अच्छा ना होगा। ये कहकर उन्होंने मुझे राज सौंपा, ये कहकर उन्होंने मुझे राज सौंपा, किसी को बताया तो अच्छा ना होगा। तो ये राज है, इन तमाम चीजों को अपने जहन में रखना चाहिए। और अपने जो जो आमाल आप कर रहे हैं, यानी इन वज़ाइफ के अलावा भी, उन सब को छुपा कर रियाकारी से बचाते हुए, इखलास पैदा करते हुए, सिर्फ दिल में ये कि मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ। तो जब हम इस तरह करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला कामयाबी अता करेगा बुजुर्गान दीन के सदक़े में, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में। आइए दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की नियतों में इखलास पैदा फरमा, मौला रियाकारी को हमसे दूर कर दे, दिखावा हमसे दूर कर दे, इन तमाम चीज़ों को हमसे दूर कर दे, हमारी नियतों में खालिस तौर पर हमारी नियतों में इखलास पैदा कर दे, खुलूस और मोहब्बत। या अल्लाह हम सब के सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, या अल्लाह हमारी नमाजों को कबूल फरमा, या अल्लाह हमारे सजदों को कबूल फरमा, या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा, जो किसी परेशानी में मुब्तला है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो कर्जदार हैं उन्हें बारह कर्जे से दोषी फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा, جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا. اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے, مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما, ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما, ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرما, ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما, ان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.